आज के सुसमाचार संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार के अध्याय 7 से लिया गया है, जहाँ पर यह घोषणा की जाती है कि प्रभु ने नाइम की विधवा के बेटे को पुनर्जीवित किया। लेकिन जब इस घटनाक्रम को हम सुनते हैं तो हम एक व्यक्ति को पुनर्जीवित करने वाले यीशु के प्यार से भी जाता एक विधवा के प्रति यीशु की अनुकंपा को ही याद करते हैं, एक विधवा के प्रति यीशु की अनुकंपा को याद करते हैं। हालांकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। चमत्कार यह है कि एक व्यक्ति को यीशु पुनर्जीवित करते हैं, वापस उनको जीवन देते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम उस बात पर ध्यान देंगे जहाँ प्रभु उस विधवा को विधवा के सामने अनुकंपा दिखाते हैं, विधवा के प्रति अनुकंपा दिखाते हैं। विधवा के प्रति अनुकंपा से द्रवित होकर प्रभु उसके बेटे को वापस जीवन देते हैं। प्रभु विधवाओं का विशेष ख्याल करते हैं, विधवाओं के चाल चलन पर भी प्रभु ध्यान देते हैं। संत लूकस के ही सुसमाचार के अध्याय 21 में हम सुनते हैं कि एक विधवा 2 सिक्के जब मंदिर में डालते हैं तो उस पर भी प्रभु ध्यान देते हैं और शिष्यों से कहते हैं इसने जो सबसे ज़्यादा दिया, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, जितना था वो पूरा डाल दिया। तो यीशु एक विधवा की सराहना करते हैं। यही बात शिष्य भी सीख लेते हैं और इसलिए प्रेरित चरित के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि जब यूनानी विधवाओं की उपेक्षा की गई थी रसद के वितरण में, तो शिष्य लोग उस पर ध्यान देते हैं और वहाँ पर धर्म सेवकों के साथ धर्म सेवकों की नियुक्ति होती है इसके लिए कि किसी भी विधवा की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। विधवाओं के लिए ईश्वर का विशेष संरक्षण है, ईश्वर उनको विशेष संरक्षण देते हैं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 22 वाक्य 21 और 23 में प्रभु का वचन कहता है, तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो, विधवा और अनाथ के साथ कभी भी दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भटक उठेगा। वचन कहता है विधवा और अनाथ के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहिए, विधवा और अनाथ के विरुद्ध दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु का क्रोध भड़क उठेगा। स्तोत्र 68 वाक्य 6 में प्रभु का वचन कहता है, अनाथों का पिता विधवाओं का रक्षक यही ईश्वर अपने पवित्र मंदिर में निवास है। ईश्वर का एक नाम है विधवाओं का रक्षक, अनाथों का पिता। ईश्वर अपने नाम के साथ भी उनको जोड़ देते हैं, अनाथों के पिता विधवाओं के रक्षक, इतना ईश्वर उनको ख्याल करते हैं। इसलिए जब हम ईश्वर की राह पर चलना चाहते हैं हमें भी ईश्वर के इस मनोभाव को अपनाना चाहिए। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 17 से 22 में प्रभु का वचन कहता है, तुम ना तो परदेशी अथवा विना अनाथ के साथ अन्याय करो और ना रहने के तौर पर विधवा का वस्त्र लो। याद रखो कि तुम मिस्र देश में दास थे और कि ईश्वर ने वहाँ से तुम्हारा उद्धार किया, इसलिए मैं तुम लोगों को ये आदेश दे रहा हूँ, जब तुम अपने खेत में फसल काटोगे और यदि वहाँ एक पूला भूल जाओगे तो उसे ले आने के लिए नहीं लौटोगे, उसे किसी परदेशी अनाथ अथवा विधवा के लिए छोड़ दोगे, जिससे तुम्हारा प्रभु तुम्हें अपने कार्यों में आशीर्वाद देता रहे। हम जानते हैं जब लोग लूनते हैं और खेती करने के बाद जब सब तैयार होता है तो जो फसल काटने के लिए लोग निकलते हैं तो काट के वापस घर जाते हैं, तो उसके बाद जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, किसके पास कुछ नहीं है, वे लोग निकलते हैं। और वे लोग जिस ज़मीन में खेती हो चुकी है, फसल काट लिया है, उस खेत में चक्कर काटते हैं, उसमें कुछ अनाज गिरा है तो उसको उठा लेते हैं। तंगाली में लोग ऐसा करते हैं, गरीब लोग ही ऐसा करते हैं, जिसके पास पैसा है ऐसा नहीं करेगा। तो प्रभु कहते हैं उनका भी ख्याल रखना। और इसलिए तुम अगर हो सकता है तुमने कुछ पूला वहाँ पर छोड़ दिया हो, कुछ छूट गया तुम्हारा फसल का कुछ अंश छूट गया, तो वापस उसको लेने के लिए मत जाना। उसको अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, परदेशी के लिए छोड़ देना, इससे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। तुम उस पूले को उठाने जाओगे तो अनाथ या विधवा उससे वंचित रह जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे खेत से कुछ अनाज कोई विधवा उठा लेती है, कोई अनाथ उठा लेता है, उससे तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारा कुछ जा रहा है लेकिन बहुत कुछ तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें आशीर्वाद ईश्वर देंगे। जब तुम अपने जैतून के पेड़ों को पेड़ों से फल छाड़ोगे तो बाद में दोबारा उसकी शाखाओं को नहीं छाड़ोगे। जो रह जाएगा वह परदेशी, अनाथ और विधवा का होगा। जब तुम अपनी दागबारी में अंगूर तोड़ लोगे तो बाद में बचे हुए अंगूर बटोरने नहीं जाओगे। जो रह जाएगा वो परदेशी, अनाथ और विधवा का होगा। याद रखो कि तुम इस देश में दास थे, इसलिए मैं तुम लोगों को यह आदेश दे रहा हूँ। जब कभी हम कुछ फसल काटते हैं तो उसका हिस्सा, एक हिस्सा अनाथ और विधवा को देना जरूरी है। ये प्रभु के कहने का मतलब है, प्रभु की शिक्षा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 4:10-11 में प्रभु का वचन कहता है, प्रवक्ता 4:10-11, अनाथों के दयालु पिता बनो, पति की तरह उनकी माता के सहायक बनो, तब तुम मानो सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बनोगे और वह तुमको माता से भी अधिक प्यार करेगा। अगर हम अनाथों और विधवाओं के ख्याल करने लगेंगे, प्रभुवचन कहता है ईश्वर हमको माता से भी अधिक प्यार करेंगे, ईश्वर हमको बहुत चाहेंगे, ईश्वर हमको बहुत चाहेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35:17, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35:17-19, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35:17-19, प्रभु का वचन कहता है, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा और रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करता, उसके आंसू उसके चेहरे पर झरते हैं और उसकी आग अत्याचारी पर अभियोग लगाती है, उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आह सुनता है। विधवा और अनाथ के बारे में प्रभु कहते हैं, विधवा के आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आह सुनता है। जब बहुत दुखी होती है विधवा, उसके मुंह से शब्द में नहीं निकलता है, लेकिन उसकी आह आह जो जो जिसको ज़्यादा पीड़ा होती है, वेदना होती है, दर्द होता है, वो शब्द नहीं न निकाले होंगे, निकालते होंगे, लेकिन फिर भी अंदर से जो अपनी भावना को प्रकट करते हुए आग बढ़ता है, प्रवचन कहता है ईश्वर उनकी आँख सुनता है, ईश्वर उनकी आँख सुनता है। इसलिए हमें विधवा और अनाथ पर बहुत ध्यान देना चाहिए, उनके प्रति दयालु बनना चाहिए। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य, जकरिया के ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 8-14 में प्रवचन कहता है, यह विश्वमंडल के प्रभु का कथन है, विधि विधानों पर न्यायपूर्वक अमल करना और अपने भाइयों के साथ करना और दया का व्यवहार करना, विधवा अनाथ परदेशी और गरीब को न सताना, न एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना। किंतु उन्होंने ध्यान देने से इनकार किया, उन्होंने पीठ दिखाई और नहीं सुनने के लिए कानों पर हाथ रख दिया। प्राचीन काल के नबी विश्वमंडल के प्रभु की प्रेरणा से जो वचन और शिक्षा देते थे उसे उन्होंने वज्र की तरह अपने हृदय को कठोर बनाकर नहीं सुनना चाहा। इससे विश्वमंडल के प्रभु की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। अतः ऐसा हुआ कि वह उनको पुकारता रहा, किंतु उन्होंने उसकी कुछ नहीं सुनी। वैसे ही विश्वमंडल के प्रभु ने निश्चय किया कि जब वे मुझे पुकारेंगे तो मैं नहीं सुनूंगा। उल्टे उसने उन्हें अपरिचित राष्ट्रों के बीच तितर बितर कर दिया और उनके चले जाने पर उनका देश उजाड़ कर सुनसान और निर्जन हो गया। कभी कभी अगर हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है, इसका कारण यह भी हो सकता है कि हम गरीबों पर दया नहीं करते। कुछ लोग अपने जीवन के बारे में ही सोचते हैं, गरीबों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। गरीबों के बारे में सोचना, गरीबों का ख्याल करना, विशेष रूप से विधवाओं और अनाथों का हमारा कर्तव्य है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारी ईश्वर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ किसी को तंग नहीं करते हैं, सब कुछ ठीक है। गरीबों के प्रति प्यार रखना, उनका अनादर नहीं करना, अनादर नहीं करना। गरीबों का अनादर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है, गरीबों का अनादर। हम लोगों की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका आदर करना भी सीखना चाहिए। किस तरह से हम सेवा करते हैं, उनको कुछ देने से सेवा नहीं होती है। उनका आदर करना, उनके मनोभावों को समझना, उनके दृष्टिकोण को समझना, उनकी कठिनाई को समझना, उनके दृष्टिकोण से देखकर उनको उनकी सेवा करना, अपने हिसाब से नहीं। हमको फुर्सत मिलेगी तो सेवा करेंगे, ऐसा नहीं। उनके दृष्टिकोण को समझना, उनकी मनोभावना को समझना, किसी बच्चे को, किसी गरीब के दिल को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी बच्चे के दिल को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो हमारा काम पूरा बिगड़ जाएगा। अगर हम गरीबों का अनादर करते हैं, अनाथों का अनादर करते हैं और दीन दुखियों का अनादर करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। तो आइए इस मिशन बलिदान में हम ईश्वर से विनती करें, प्रभु यीशु उस विधवा को लेकर दया अनुकंपा दिखाते हैं और उस अनुकंपा के कारण वे चमत्कार करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, हमें भी कृपा दीजिए कि हम कभी भी गरीबों का अनादर न करें। गरीबों के नाम पर गरीबों की सेवा करने के लिए अपने जीवन को हमने समर्पित किया है। हे प्रभु, हर एक गरीब को प्यार करने की, उनकी सेवा करने का मतलब पहले उनको प्यार करना, उनके ऊपर अनुकंपा दिखाना। अगर उनके प्रति प्यार नहीं है तो हमारा कार्य सेवा कार्य नहीं है। जब तक हमारे कार्य में प्यार नहीं है, उसमें कोई सेवा नहीं है, हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो आइए हम प्रभु ईश्वर से हे कृपा मांगे कि हम प्रेम से दूसरों की सेवा करें, विशेष रीति से गरीबों, अनाथों, दीन दुखियों की सेवा करें, और ईश्वर हमारे ऊपर भी आशीष बरसाए।